समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारी स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:30 बजे हैं और ये समय है आपकी अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ खास है उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। कार्यक्रम परिक्रमा में आज मैं हूं आपके साथ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी अनुजा कुमार। नमस्कार अनुजा।
नमस्कार वैष्णवी, एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इनटू टुडेज परिक्रमा। फर्स्ट ऑफ ऑल, समथिंग इंटरेस्टिंग टू लुक फॉरवर्ड टू फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ दिल्ली इज शेड्यूल्ड फॉर March 25th to 31st एट भारत मंडपम इन द सिटी, शोकेसिंग ओवर 125 फिल्म्स टू सेलिब्रेट ग्लोबल एंड इंडियन सिनेमा। इनिशिएटेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिस इनॉग्रल पब्लिक फोकस्ड इवेंट विल फीचर मास्टर क्लासेस, पैनल डिस्कशंस एंड द सिने एक्सचेंज फिल्म मार्केट, एमिंग टू बूस्ट लोकल फिल्म टूरिज्म एंड टैलेंट। And the main focus is to promote Delhi as a global cinematic hub and fostering networking through the Cineverse Expo and Cine Exchange. The festival will offer young talent an international platform. It will also promote dialogue on new technologies and evolving cinematic practices and further energize tourism, employment and the creative industries. It is open to the public with prior registration. And of course, all the individuals interested in watching unique, high-quality Indian and international films can watch out for more details in the newspapers and, of course, Akashwani programs in the coming days. And now news making headlines at this hour, Vaishnavi. Shall we start?
Ji, bilkul. भारतीय पोत नंदा देवी 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर कतर से होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते गुजरात के वडिनार बंदरगाह पहुंचा।
Country's economic situation continues to be strong despite ongoing crisis in West Asia, government informs Lok Sabha.
Lok Sabha ne vipaksh ke 8 sansadon ka nilamban radd kiya.
President Draupadi Murmu says nutritious meals provided to children under PM Poshan scheme are investment in human capital.
भारत ने अफगानिस्तान के अस्पताल पर पाकिस्तान के हवाई हमले की निंदा की। हमले में 400 से अधिक लोग मारे गए। इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता पर खतरा बताया।
एंड नाउ टाइम फॉर अ सेगमेंट डेटलाइन इंडिया, in which we take a look at the developments taking place at the national or global level, and today we will talk about Bridging Digital Divide, Empowering Bharat in the Digital Age. India's digital transformation represents one of the largest population-scale expansions of connectivity and technology-enabled public service delivery globally. Anchored in the Digital India program, launched in 2015, the country's strategy has focused on building digital infrastructure as a core utility for every citizen, bridging the digital divide, delivering governance and services on demand, and empowering people through digital access.
एक दशक पहले भारत में डिजिटल विभाजन साफ तौर पर दिखाई देता था। तेज इंटरनेट सुविधा ज्यादातर शहरों तक ही सीमित थी, जबकि गांवों में कनेक्टिविटी बहुत कम थी। पिछले कुछ वर्षों में लगातार सरकारी निवेश से ब्रॉडबैंड नेटवर्क का विस्तार हुआ है और ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम तेजी से आगे बढ़ा है। इससे गांवों और दूरदराज के इलाकों में इंटरनेट की पहुंच और गुणवत्ता दोनों में सुधार आया है। सस्ता डेटा, डिजिटल सेवा केंद्र और आपस में जुड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म अब लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, डिजिटल भुगतान करने, ऑनलाइन पढ़ाई करने और शासन की प्रक्रिया में भाग लेने में मदद कर रहे हैं।
And of course, India's digital backbone is the foundation of its effort to bridge the digital divide at population scale. It operates through three interlinked pillars: universal connectivity infrastructure, digital public infrastructure, and computing capacity. Together, these pillars ensure that access, services, and technological capability evolve in tandem. This integrated approach enables connectivity to translate into meaningful participation in the digital economy.
सार्वभौमिक डिजिटल कनेक्टिविटी और किफायती इंटरनेट भारत के डिजिटल क्रांति की नींव है। इससे सभी लोगों को समान अवसर मिलते हैं, शासन बेहतर होता है और हर नागरिक को आगे बढ़ने में मदद मिलती है। इसका सबसे बड़ा आधार भारत नेट है, जिसके अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर का तेजी से विस्तार किया गया है ताकि गांवों तक भी तेज इंटरनेट पहुंच सके। 2026 की शुरुआत तक 2 लाख से अधिक ग्राम पंचायतें इससे जुड़ चुकी हैं। साथ ही ऑप्टिकल फाइबर केबल का नेटवर्क 2019 में 19 लाख रूट किलोमीटर से बढ़कर 2025 तक 42 लाख से अधिक रूट किलोमीटर हो गया है।
And complementing fiber, India's lightning fast 5G rollout now covers 99.9% districts of the country, with over 5.18 lakh base transceiver stations delivering ultra-fast mobile broadband everywhere. Backed by the Telecommunications Act 2023 for faster infrastructure approvals, indigenous 4G, 5G technology and the National Broadband Mission, these efforts turned connectivity from a luxury into an essential right. Affordability has been a game changer. Data costs have plummeted from 269 rupees per GB in 2014 to roughly 8 to 10 rupees per GB in 2025-26, making India one of the world's cheapest data markets. And this drastic reduction has fueled explosive growth. Broadband subscriptions crossed over 100 crore in November 2025, a more than six-fold jump from 13.15 crore a decade earlier.
श्रोताओं, अगर हम देखें तो कुल मिलाकर ऐसे सुधार ग्रामीण समुदायों, किसानों, छात्रों, उद्यमियों को सशक्त बना रहे हैं ताकि वे भारत की बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन सके। जैसे जैसे डिजिटल कनेक्टिविटी आम लोगों तक पहुंच रही है, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई ये सुनिश्चित करती है कि इंटरनेट सिर्फ कनेक्शन तक सीमित न रहे बल्कि भरोसेमंद और आसान सेवाओं में बदल जाए। भारत का डीपीआई ढांचा डिजिटल पहचान, आसान भुगतान और सुरक्षित दस्तावेज जैसी सुविधाएं देता है। ऐसे खासकर ग्रामीण आम कम आय वाले लोगों के लिए सेवाएं अधिक सुलभ बनती है।
एंड एज ऑफ फरवरी 2026, आधार हैज इशूड ओवर 143 करोड़ यूनिक डिजिटल आईडीज, इनेबलिंग टारगेटेड वेलफेयर डिलीवरी, direct benefit transfers and easy access to government and financial services even for those previously excluded due to lack of formal ID. Unified Payments Interface, UPI, handles nearly 28.33 lakh crore rupees in monthly transactions, delivering affordable, real-time digital payments nationwide, fueling financial inclusion across urban, rural and income divides through zero-cost transfers via mobile phones. DigiLocker boasts over 62 crore registered users as of February 2026, offering secure paperless storage and sharing of official documents in sectors like health, education, agriculture and welfare, eliminating paperwork barriers and empowering citizens with instant trusted access anywhere.
ये सभी डीपीआई स्तंभ मिलकर इंटरनेट की साधारण पहुंच को वास्तविक सामाजिक और आर्थिक फायदे में बदल रहे हैं। इसे सेवाएं आसानी से और बिना रुकावट मिल रही है, वित्तीय समावेशन बढ़ रहा है और डिजिटल लेनदेन भरोसेमंद बन रहे हैं। भारत द्वारा डिजिटल अवसंरचना, आपस में जुड़े प्लेटफॉर्म और उच्च क्षमता वाली कंप्यूटिंग में किए गए निवेश का साफ असर दिखाई दे रहा है। इससे सेवा वितरण बेहतर हुआ है, वित्तीय समावेशन बढ़ा है और शोध क्षमताएं मजबूत हुई हैं, साथ ही नवाचार के नए अवसर भी पैदा हुए हैं।
In fact, India's digital transformation is not only about expanding connectivity, but about ensuring that every citizen can participate meaningfully in the digital economy. Building an inclusive digital ecosystem requires more than infrastructure. It calls for local service access points, widespread digital literacy, affordable internet, advanced skilling, and opportunities for innovation and also entrepreneurship. And by combining last-mile delivery with capability-building and market linkages, these initiatives are turning digital access into real social and economic empowerment across rural and urban India.
संतुलित विकास के लिए डिजिटल साक्षरता को जरूरी मानते हुए सरकार ने खासतौर पर ग्रामीण आबादी पर ध्यान दिया है। राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन यानी डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत शुरुआती चरण में 52 लाख से अधिक के लक्ष्य के मुकाबले 53.67 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया गया, जिनमें लगभग 42% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से थे। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए 2017 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का उद्देश्य 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों में कम से कम एक व्यक्ति को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है.
एंड दिस फाउंडेशन हैज बीन स्ट्रेंथेंड एट द इंस्टीट्यूशनल लेवल थ्रू द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2009 एंड इट हैज ब्रिज्ड गैप्स इन हायर एजुकेशन बाय एक्सपैंडिंग ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी virtual labs and digital resources, ensuring even remote campuses match premier institutions in quality and access. The National Education Policy 2020 is further accelerating this progress by mainstreaming digital literacy across school and higher educations and integrating blended learning, digital libraries, AI-enabled tools and teacher training to create a truly equitable and future-ready education system.
इसके अलावा भारत का डिजिटल परिवर्तन अधिकार आधारित और सभी के लिए सुलभ भी है. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 सूचना और संचार तकनीक ICT का सुलभ बनाना अनिवार्य करता है. वहीं यूनिक डिसेबिलिटी ID देशभर में दिव्यांगजनों के लिए सरकारी लाभों तक पहुंच को आसान बनाती है. भारत का व्यापक डिजिटल साक्षरता तंत्र जिसमें PMG दिशा, दीक्षा और स्वयं जैसे प्लेटफॉर्म शामिल है, कनेक्टिविटी को वास्तविक क्षमता, अवसर और समावेशन में बदल रहा है. ये जन केंद्रित सोच भारत को एक समावेशी डिजिटल विकास के वैश्विक मॉडल के रूप में स्थापित करती है जहां कोई भी पीछे ना छूटे.
इफ वी टॉक अबाउट इट मोर, इंडियाज डिकेड लॉन्ग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हैज फंडामेंटली रीशेप्ड एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिवर्सल कनेक्टिविटी, रोबस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एडवांस्ड कंप्यूटिंग कैपेसिटी. Citizens across urban, rural and remote areas are now better positioned to participate in the country's digital economy. Equally significant is the focus on youth, startups and deep tech sectors, which ensures that digital inclusion goes beyond access to create pathways for skills, entrepreneurship and high-value employment. By integrating education, skilling, innovation and entrepreneurship across diverse geographies, India is not only bridging the digital divide, but also fostering inclusive growth, equitable opportunities, and a resilient knowledge economy. This multi-layered approach sets the foundation for sustained empowerment in the digital age, leaving no citizen behind.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
And in this segment, let's first take all our listeners to Panaji. The Sahitya Academy in New Delhi has been announced this year's awards, and in the Konkani category, the award has been conferred on Karnataka-based Konkani poet Henry Ignatius Mendonca, who writes under the pen name H.M. Pernal from Pernal in Udupi. More from our correspondent.
The award has been announced for his critical book on Konkani poetry titled Konkani Kavye Rupa Ani Rupakan. The book has been published by Kavita Prakashan. The book also carries a foreword by Damodar Mauzo, the Jnanpith Award winner. H.M. Pernal is a well-known poet from Karnataka. So far, 7 of his poetry collections and several other books have been published. He has also received the Vimala Pai Poetry Award of the World Konkani Center as well as Mathais Kutumba Poetry Award of the Kavita Trust. Pernal also runs the Konkani web magazine Kittal.com and serves as its editor. For Parikrama, Mahesh Sobde, Panji.
और अब बात करते हैं भारत के उत्तर में स्थित देवभूमि उत्तराखंड की, जो विश्व भर में अपनी प्राकृतिक सुंदरता, पवित्र नदियों और धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध है. उत्तराखंड में होली, दीपावली, पौराणिक मेले और बसंत के आगमन पर मनाए जाने वाला फूलदेई जैसे त्यौहार पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाए जाते हैं. आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की समृद्ध लोक संस्कृति और प्रकृति प्रेम का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई की, जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों में 15 मार्च से शुरू होकर अगले एक महीने तक मनाया जाता है. आइए इस पर्व के महत्व के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता साक्षी सिंह के पास, जो बता रही हैं कि उत्तराखंड में फूलदेई मनाने का क्या महत्व है.
उत्तराखंड में 15 मार्च को प्रकृति प्रेम का प्रतीक लोक पर्व फूलदेई पारंपरिक उल्लास और रीति रिवाजों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया. राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित अपने आवास में यह पर्व मनाया. वहीं राज्य के पर्वतीय जिलों में फूलदेई को लेकर बच्चों में खासा उल्लास देखा जा रहा है। कुमाऊं में बच्चों द्वारा अगले एक माह तक इस पर्व को मनाया जाता है। फूलदेई उत्तराखंड का एक प्रमुख पारंपरिक लोक पर्व है जो वसंत उत्सव के आगमन और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। ये पर्व चैत्र मास की संक्रांति यानी मार्च के मध्य से मनाया जाता है। इस अवसर पर बच्चे सुबह सुबह जंगलों और बगीचों से ताजे फूल, विशेषकर प्योली और बुरांज के फूल एकत्र करते हैं। इसके बाद वे थालियों या छोटे पात्रों में फूल और चावल लेकर अपने आसपास के घरों की दहलीज पर फूल बिखेरते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसके बदले में वे गुड़, चावल, पैसे और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस दौरान बच्चे पारंपरिक गीत भी गाते हैं। फूलदेई को फूल संक्रांत भी कहा जाता है। कुमाऊं और गढ़वाल में इसे फूलदेई जबकि जौनसार क्षेत्र में इसे गोगा के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में सौर कैलेंडर का प्रचलन है, इसलिए यहां हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मीन संक्रांति यानी फूलदेई से मानी जाती है। इस तरह उत्तराखंड में फूलदेई पर्व के माध्यम से बच्चे प्रकृति के ताजे फूलों के साथ नववर्ष का स्वागत करते हैं। उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में उत्तराखंड के पारंपरिक वसंत उत्सव फूलदेई त्योहार की सराहना करते हुए कहा है कि ये परंपरा और प्रकृति से जुड़ा संदेश बेहद सुंदर और प्रेरणादायक है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से साक्षी सिंह।
एंड नाउ फ्रॉम उत्तराखंड टू कोहिमा, अ ग्रुप ऑफ जर्नलिस्ट्स फ्रॉम नागालैंड इज करेंटली ऑन अ प्रेस टूर टू साउथ बिहार ऑर्गेनाइज्ड बाय द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। The initiative aims to provide media professionals with first-hand exposure to key government initiatives as well as historically significant sites in Bihar. We have more on this from our correspondent from there.
A delegation of 7 media persons from various media houses across Nagaland is taking part in the press tour organized by the Press Information Bureau. The tour is being guided by P. Sopie, head of office of PIB Kohima, along with one official from the PIB Kohima office. The initiative is designed to give journalists an opportunity to directly observe important government projects and heritage sites in the host state, helping them gain deeper insight into development efforts and cultural landmarks. The visiting media persons will also hold interactions with officials at the sites, helping them gain first-hand experience to key government initiatives and historically significant places in Bihar. The tour will continue until the 22nd of March. The press tour is expected to encourage cultural exchange and provide journalists with valuable on-ground perspectives that will enrich their coverage and promote informed and accurate reporting. For Parikrama, this is Mary, Akashvani News, Kohima.
जब हम सहकारिता या कोऑपरेटिव शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में अमूल जैसी डेयरी या खेती किसानी की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन गुजरात ने एक बार फिर साबित किया है कि सहकार की शक्ति असीम है। आज हम आपको लिए चलते हैं गांधीनगर, जहां देश की पहली सहकारी मल्टी क्विजीन रेस्तरां कामधेनु की शुरुआत हुई है।
गांधीनगर की चमकती सड़कों के बीच स्थित कामधेनु रेस्तरां आज सहकार से समृद्धि मंत्र का एक जीता जागता उदाहरण बन गया है। आमतौर पर यह व्यवसाय निजी मालिकाना हक पर आधारित होता है, जहां लाभ ही मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन वर्ष 2003 में पंजीकृत कामधेनु ग्राहक सहकारी भंडार लिमिटेड ने इस धारणा को बदल दिया। 350 से अधिक सदस्यों वाली इस मंडली ने जब हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में कदम रखा तो उनका लक्ष्य केवल मुनाफा नहीं बल्कि स्वच्छता, गुणवत्ता, समानता का एक ऐसा मॉडल तैयार करना था जो दूसरों के लिए एक मिसाल बने। इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी खूबी इसका फार्म टू टेबल कॉन्सेप्ट है। यहाँ ताजे मसालों और सब्जियों का सीधा उपयोग किया जाता है और किसी भी व्यंजन में कृत्रिम रंगों का इस्तेमाल नहीं होता है। चेयरमैन लक्ष्मण भाई पटेल ने बताया कि जल्द ही यह रेस्टोरेंट पूरी तरह से ऑर्गेनिक होने जा रहा है। यही कारण से इसे FSSAI ने 4-स्टार हाइजीन रेटिंग से भी नवाजा है। गांधीनगर के बाद अब अगले कुछ ही महीनों में वडनगर में भी इसकी दूसरी शाखा शुरू होने जा रही है। वास्तव में कामधेनु रेस्टोरेंट ने यह सिद्ध कर दिया है कि रसोई और सेवा क्षेत्र में भी सहकारिता का मॉडल सफल हो सकता है। गांधीनगर का प्रयोग आज उन सभी के लिए मार्गदर्शक है जो सामूहिक प्रयास से समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। परिक्रमा के लिए अहमदाबाद से मैं अपर्णा खूंज।
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। बैडमिंटन में किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी और तन्वी शर्मा आज फ्रांस में शुरू हो रहे ऑर्लियंस मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट में भारत की चुनौती पेश करेंगे। थारून मन्नेपल्ली और किरण जॉर्ज भारत की पुरुष सिंगल्स टीम का हिस्सा हैं। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सुपर 300 टूर्नामेंट में नहीं खेल रही हैं।
एंड इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस न्यूज ऑफ द डे, बेंचमार्क डोमेस्टिक इक्विटी इंडिसेस क्लोज्ड 0.75% higher today, marking their second consecutive day of gains. The Sensex climbed 568 points to close at 76,071, while the Nifty rose 172 points to settle at 23,581. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading up at 1,56,830 rupees per 10 grams, while silver was also trading up at 2,56,950 rupees per kilogram when reports last came in. And for more updates about the market activities, tune in to Akashwani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 p.m. this evening.
अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we remember freedom fighter and former chief minister of Uttar Pradesh, Hemavati Nandan Bahuguna, who died on the 17th of March, 1989. He took part in the Quit India movement and was imprisoned by the British during 1940s.
Bahuguna was born in Pauri Garhwal area of present-day Uttarakhand in 1921. It was during his college education in the 1930s at Allahabad University that Bahuguna started participating in the freedom struggle. During the Quit India movement in 1942, he was arrested and put behind bars from 1942 to 1946. After India's independence, he worked with labor unions in Allahabad and he was appointed as a member of the Indian National Trade Union Congress.
Bahuguna won the Legislative Assembly elections in 1952 from Karchana and Chail constituencies in Allahabad, Uttar Pradesh, and in 1957 the Assembly polls from Sirathu. In 1957, Bahuguna was made a Parliamentary Secretary in the State's Ministries of Labour and Social Welfare. A year later, he moved up the ranks and served as a Deputy Minister for Industries. Later, he worked in the Labour Department in 1962.
The 1960s and early 1970s continued to witness Bahuguna's steady rise as he was given the charge of the Ministry of Finance and Transport in 1967. In 1971, he was elevated to Union Ministry of Communication as Minister of State. After 4 years, Bahuguna was appointed the Chief Minister of Uttar Pradesh but resigned in 1975.
In 1977, he formed a new group called Congress for Democracy with Jagjivan Ram and Nandini Satpathy. The group merged with Janata Dal Alliance and Bahuguna became cabinet minister. Till his death in 1987, Bahuguna continued to work for the betterment of people. We salute the great Indian.
We also remember social activist and freedom fighter Jagdeo Rao Patil, who died on the 17th of March 1939. A resident of district Buldhana, Maharashtra, Patil took part in the civil disobedience movement of 1930. He was arrested and sentenced to 6 months rigorous imprisonment. After coming out of jail, he edited the newspaper Rashtramata. He was elected the president of Malakapur Taluka Congress Committee and continued working for the freedom movement. It is believed that he was killed under mysterious circumstances by a police agent on 17th of March 1939. We salute the great martyr.
We also remember martyr Mirza Bahadur, a resident of Delhi, who participated in the First War of Indian Independence in 1857. He took active part in fighting against advancing British army in Delhi, but was captured by British troops after reoccupation of Delhi. Accused of rebellion against British rule, Mirza was sentenced to death and executed by hanging on the 17th of March 1858. We salute the great martyr.
And today we also pay tribute to an officer in the Indian Army named Brigadier Rai Singh Yadav, notable for his participation in the Nathula and Chola clashes in 1967. He displayed exemplary courage and leadership during the clashes, for which he was awarded the Mahavir Chakra, India's second highest military decoration. He is also known as the Tiger of Nathula. Brigadier Rai Singh Yadav's character was played by Bollywood actor Arjun Rampal in the movie Paltan in the year 2018, if you remember, Vaishnavi, at that time.
जी बिल्कुल. और साथ में यहाँ पे ये कहना चाहूंगी कि सैन्य जीवन में उन्होंने अनेक कठिन परिस्थितियों में अपने नेतृत्व और बहादुरी का परिचय दिया. देश की सेवा करते हुए उन्होंने सदैव अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा था.
Right, moving on, we also pay tribute to Sulochna Chavan, popularly known as the Queen of Lavani. She was a legendary Marathi folk singer who brought the traditional Lavani art form to national recognition. Born in 1933, on this day in Mumbai, she began performing at a very young age and went on to record hundreds of songs for Marathi cinema and stage performances. Sulochna Chavan was one of the most well-known singers in this traditional Maharashtrian musical genre, closely associated with the folk theatre form Tamasha. She began performing at a very young age and went on to record hundreds of songs for Marathi cinema and stage performances. Her powerful voice, expressive style and deep connection to folk rhythms made Lavani accessible to wider audiences beyond Maharashtra as well. In recognition of her immense contribution to Indian music and culture, she was honoured with the Padma Shri, which is India's highest civilian award. We have a folk song in her voice.
पदरावरती जर तारी सा मोर नाच रहा आई मला ने सब शालू नवा आई मला ने सब शालू नवा
उनकी आवाज में ऐसी मिठास और ऊर्जा थी कि उनके गाए गीत मंच और फिल्मों दोनों में बेहद लोकप्रिय हुए. उन्होंने अपने लंबे संगीत जीवन में सैकड़ों लावणी गीत गाए थे और महाराष्ट्र की लोक संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
सर्टेनली हर जर्नी रिमाइंड्स अस दैट ट्रू कल्चरल आइकन्स आर नॉट जस्ट परफॉर्मर्स, दे आर द गार्जियंस ऑफ स्टोरीज, रिदम्स एंड ट्रेडिशंस दैट शेप द आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. And then again, moving on, we pay tribute to Kalpana Chawla. She's famous for being the first Indian-born American woman to travel to space, serving as a NASA astronaut and aerospace engineer on the space shuttle Columbia, and tragically dying in the 2003 Columbia disaster, becoming a lasting inspiration for women and aspiring scientists worldwide. Her journey from India to NASA symbolizes determination, courage, and breaking barriers in science and exploration. And Chawla was posthumously awarded the Congressional Space Medal of Honor, the NASA Space Flight Medal, and the NASA Distinguished Service Medal. Several buildings, spacecraft, and extraterrestrial landmarks have been named in her honor.
समाज सुधार और शिक्षा के प्रसार के लिए समर्पित व्यक्तित्व रामनवमी प्रसाद का आज जन्मदिन है. वे समाज में समानता और तथा भाईचारे की भावना को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते रहे. विशेष रूप से उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए, क्योंकि उनका मानना था कि समाज की प्रगति के लिए महिलाओं को आज शिक्षित होना अत्यंत आवश्यक है.
एंड टुडे इज ऑल्सो द बर्थडे ऑफ निरुपमा बोरगोहाई. She is an Indian journalist and novelist in the Assamese language. She is a Sahitya Academy Award winner, best known for her novel Abhiyatri. In the year 2015, she decided to return her Sahitya Academy Award in protest against some rising intolerance in the society. She was a recipient of the Assam Valley Literary Award too. Borgohai's Abhiyatri was a biographical novel of the life of an Assamese freedom fighter, feminist and social activist, Chandraprav Saikiani. This won her the Sahitya Academy Literary Award the following year and is considered one of her finest novels.
उन्होंने अपने उपन्यासों और कहानियों में समाज की वास्तविकताओं, विशेषकर महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्ष को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया. असमिया साहित्य में उनके योगदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है और उनकी कई रचनाएं पाठकों के बीच आज भी उतनी ही लोकप्रिय है.
and wishing Saina Nehwal a very happy birthday from the Akashwani Parivar. She is famous for being a pioneering Indian badminton player, the first Indian to win an Olympic medal in badminton bronze at London 2012, and the first Indian woman to reach the world number one ranking in the sport. She is celebrated for her numerous international titles, including Super Series wins, and for inspiring a generation of Indian athletes in badminton with her determination and success, becoming a national hero. Of course, she became the first Indian woman to achieve the world number one ranking in 2015. And what was the award she received? It was Padma Bhushan and also the Khel Ratna Award.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, तो वैष्णवी और अनुजा को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।